हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 एंड 5 पार्ट 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहकाररघुनाथान् वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिशनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहकणलयिता श्रीविशाखान्वितंश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। भगवान हमें अपनी उन विभूतियों के विषय में बता रहे हैं, उन क्वालिटीज के विषय में बता रहे हैं जो कि मनुष्य के अंदर हैं। और वो 20 क्वालिटीज के विषय में भगवान ने अभी बताया हमें इस श्लोक में, जिसकी हम 9 क्वालिटीज को समझ चुके हैं सुखम दुखम तक। एक दफा ट्रांसलेशन श्लोक देखिए। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथिविधाः। अनुवाद। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनमें से 9 गुणों के विषय में हम पढ़ चुके हैं, सुखम दुखम, और उसके बाद आज भावो भावो भयम चा भय मेव से, इन 4 क्वालिटीज पर हम डिस्कस करेंगे। कृपया श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य में नेक्स्ट पेज के सेकेंड पैराग्राफ जो भाव से स्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे। आप निशान लगा रहे हो ना, वहीं से जहाँ से कल हमने पढ़ना बंद किया था, वहीं से नेक्स्ट पैराग्राफ जो शुरू हो रहा है वहां से देखिए। भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर स्टॉप कीजिए, आगे हम बाद में पढ़ते हैं। पहले जन्म और मृत्यु के विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भाव का मतलब होता है जन्म, और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की कि जन्म केवल शरीर का ही होता है। आत्मा तो नित्य है, सनातन है, इटर्नल है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। ये तो शरीर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया, जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। आत्मा का जन्म कभी नहीं होता। जन्म किसका होता है? शरीर का होता है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात श्री प्रभुपाद जी ने बताई कि इसकी व्याख्या हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, यानी श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण डिटेल से बताते हैं कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। और बहुत ही सुंदर श्लोक है 2.27, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्येति न त्वं शोषितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः। कितने सुंदर और सिंपल शब्दों में भगवान की कहते हैं, जातस्य जिसने जन्म लिया है उसकी एक ही सच्चाई है, उसके जीवन का एक ही फ्यूचर है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है वो डेफिनेटली मरेगा। ध्रुव का मतलब होता है तथ्य है, सर्टेनली मस्ट डाय। जन्म का मतलब ये है कि जिसने जन्म लिया है उसके जीवन की एक ही सच्चाई है, एक ही वास्तविकता है, एक ही तथ्य है कि जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्य होगी। और भक्तों, वास्तव में तो जन्म मृत्यु की तैयारी का नाम है। जिस दिन से हम जन्म लेते हैं उसी दिन वह क्षण डिसाइड हो जाता है कि इस दिन हमारी मृत्यु होगी, और हम धीरे 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 उसी मृत्यु के क्षण की ओर बढ़ रहे हैं। तो वैसे तो इस संसार में सब लोग जब जन्म होता है तो प्रसन्न होते हैं, और जब मृत्यु होती है तो दुखी होते हैं। लेकिन शास्त्र जन्म और मृत्यु दोनों को ही दुखदायक कहता है। शास्त्र कहता है जीवन में 4 दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यानी जिसने जन्म लिया है वो भी बहुत दुख की बात है, क्योंकि जन्म का मतलब ही ये है कि वो कहीं से मरा है तो जन्म लिया है उसने। अगर कोई जन्म ले रहा है तो उसकी एक ही सच्चाई है कि वो कहीं से मरकर यहाँ पर आया है, तो ये दुखदायक बात है कि इसकी मृत्यु हुई है। और अगर कोई मर रहा है तो उस समय यह एक सर्टेन सत्य है कि उसका कहीं ना कहीं जन्म होगा। तो भले ही जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई है वहाँ पर तो रोना धोना लगा रहता है, लेकिन वो जिसकी मृत्यु हुई है वो तो वहाँ पर आनंद के साथ अपने नए माता पिता का, नए माता पिता का प्रेम प्राप्त कर रहा है और नया जन्म का उत्सव मना रहे हैं वहां पर जहां पर उसका जन्म हो रहा है, यदि मनुष्य का या अच्छी फैमिली में हुआ है तो, और वो भी तभी संभव है। भगवान कहते हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोका उषित्वा शाश्वती समा शुचि राम श्रीमताम गे योगो भ्रष्टो भिजायते। तो यदि उसने अच्छे कार्य किए हैं, भगवान की भक्ति की है, तो अच्छा जन्म होगा। और आज जहां पर उसके मृत्यु का मातम मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जन्म का उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो वास्तव में कहने का अर्थ ये है कि जन्म और मृत्यु दो ऐसी हकीकत हैं जिनके विषय में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्टेन है, ये आवश्यक। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया अर्जुन अशोचानन व शोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाषते गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। मृत्यु और जन्म उसके लिए तो जो वास्तव में बुद्धिमान है वो कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि आत्मा एक अलग चीज है और शरीर एक अलग चीज है। आत्मा तो इस शरीर रूपी घर में रहता है और वो घर भी कैसा है, किराए का है। आज नहीं तो कल उस घर को छोड़ना है और फिर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना है। अभी हम दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हम उस जाने वाले को उसी पुराने घर में ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो तो कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। और भगवान ने इससे भी सरल करके बताया, भगवान कहते हैं 2.22 में वासांस जीर्णानि यथा विहाय नव्वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर ग्रहण करती, क्योंकि आत्मा जो है वो सदैव सफर करती रहती है, सदैव उसको आगे बढ़ना है, अपने गोल की ओर जाना है, तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में और तीसरे शरीर में इस तरह परिवर्तन होती रहती है। उसे मजबूरन होना पड़ता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको एक घर दिया, एक शरीर दिया जाता है और उसके बाद उससे वो शरीर ले लिया जाता है, प्रकृति उससे वो शरीर ले लेती है और उसको दूसरा शरीर देना पड़ता है। तो इस तरह से आत्मा को दूसरे दूसरे शरीरों में जाके कहीं बहुत ही मुश्किल से एक पुरस्कार के रूप में ये भौतिक देह मिलती है जिसको मनुष्य शरीर कहा जाता है। बहुत ही 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, बहुत सारे एग्जाम्स देने के बाद सफलता के रूप में जीव को ये मनुष्य जन्म मिलता, ये एक पुरस्कार है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसको भौतिक, ये जो भौतिक शरीर है, जो मनुष्य देह है, इसको अन्य योनियों में जिस प्रकार से प्राणी पशु जिस तरह से जीवन गुजारते हैं उस तरह से नहीं गुजारना चाहिए। इसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके वास्तविक लक्ष्य की ओर जाने के लिए यूज करना चाहिए। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवान बताते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा। ये संसार, ये शरीर सब दुखदायक है, इसमें कुछ सुख नहीं है, ये अनित्य है, ये समाप्त हो जाने वाला है, टेम्पररी है, बहुत कम समय के लिए आपको प्राप्त हुआ है। तो इमं प्राप्य भजस्वमा, इसे प्राप्त करके आप मेरा भजन कीजिए, यही वास्तव में इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लाभ है। वैसे तो भक्तों जन्म मृत्यु दोनों ही दुखदायक हैं, परंतु भक्तों के लिए मृत्यु भी शुभदायक हो जाती है, क्योंकि वो मृत्यु के उपरांत अपने कृष्ण के लोक को प्राप्त करते हैं। वैसे जो भौतिक जन संसार में जितने भी लोग हैं, भौतिक लोगों की मृत्यु तो उनके सारे प्लान्स को चौपट कर देती है। वो ये सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट ईयर में ये करूंगा, उसके बाद ये प्राप्त करूंगा, उसके बाद यहाँ जाऊंगा, उसके बाद ये करूंगा। बहुत सारे प्लान्स होते हैं जो भौतिक लोग होते हैं उनकी बुद्धि में, परंतु एक दिन काल मृत्यु बनकर आता है और भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाम, मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और तुमने जो जो प्लानिंग की है वो सब एक क्षण में सत्यानाश करके चला जाऊंगा। क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते उनकी सारी प्लानिंग्स चौपट हो जाती हैं एक मृत्यु के झटके से और वो अपने इस जीवन के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। बट लाइफ बिकम सक्सेस वेन वी पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ डेथ बाय इन एबल टू रिमेम्बर ऑफ कृष्ण। यदि हम मृत्यु के समय अंत समय में भगवान को स्मरण करने के योग्य बन जाते हैं तो हम उस अंतिम एग्जाम में पास हो जाते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्जुन, मृत्यु के समय यदि तुम मुझे स्मरण कर सको तो मैं तुम्हें नात्यत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो वास्तव में भक्तों, जो भक्तों की मृत्यु होती है ये तो वास्तविक नित्य जीवन का प्रारंभ है। भौतिक लोगों की मृत्यु से सब कुछ नष्ट हो जाता है और भक्तों की मृत्यु से उसका नित्य जीवन प्रारंभ होता है। सो द डेथ ऑफ डिवोटी इज ग्लोरियस। भक्तों की तो मृत्यु भी शुभ होती है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही एक सुंदर मिसाल देते हैं मृत्यु भक्त और अभक्त के विषय में। जैसे काल होता है वो भक्तों को भी लेकर जाता है, भक्तों की भी मृत्यु होती है, परंतु वो कैसे है, जैसे एक बिल्ली होती है वो अपने मुंह से चूहे को भी उठाती है और उन्हीं उसी मुख से वो अपने बच्चे को भी उठाती है। लेकिन जब वो चूहे को उठा रही होती है तो वो उसका अंतिम क्षण होता है, उसको काट कर खा जाती है, और जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसी मुख से इतने प्यार से उसको उठाती है और उसको एक अच्छे प्रोटेक्ट घर में ट्रांसफर करती है। वो इसको इसलिए लेके जा रही है क्योंकि ये जगह उसके रहने के लिए योग्य नहीं है, तो उसे अच्छी जगह में ट्रांसफर करने के लिए जा रही है। सिमिलरली मृत्यु तो भक्तों को भी आती है, परंतु भक्तों के लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मृत्यु के बाद वो अपने इटर्नल घर में अपने परम प्रीतम कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो मृत्यु तो भक्तों की भी होगी और अभक्तों की भी होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा। भक्त तो मृत्यु के उपरांत अपने प्रीतम के घर में उससे मिलते हैं। जैसे एक जब किसी कन्या का ब्याह होता है तो उसको भी घर से विदा करना पड़ता है, और अगर कोई क्रिमिनल होता है तो उसे भी घर से निकाला जाता है, है ना, उसे भी वो आते हैं पुलिस के एजेंट और उसे लेकर चले जाते हैं। और एक कन्या होती है जो दुल्हन बनती है, दूल्हा आकर उसे भी ले जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो दुल्हन को लेके जा रहा है वो उसे उसके घर लेके जा रहा है जहाँ पर उसका राज होने वाला है, जहाँ पर सब उसे प्रेम करने वाले हैं, परंतु एक क्रिमिनल को जेल में लेके जा रहा है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो मृत्यु के उपरांत भगवान से मिलने जा रहे हैं और उनके लिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो भक्ति नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, जैसे वो चोर है तो वो कहाँ जा रहा है, दुखदायक जिंदगी की ओर, इसलिए वो सदैव भयभीत रहते हैं कि न जाने हमारे साथ क्या होगा। भक्तों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। इसीलिए इस टॉपिक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरा टॉपिक बताया वो है भय। भय तो केवल अभक्तों को होता है, भक्तों के लिए कोई भय नहीं होता है। अभक्त लोग क्योंकि अपने जीवन में केवल उन्हीं वस्तुओं को इम्पोर्टेंस देते हैं जो इस भौतिक शरीर से लिंक्ड होती हैं। आत्मा और आत्मा के कल्याण के लिए वो समय नहीं बिताते, आत्मा के कल्याण के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, वो केवल अपने भौतिक शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी मुझे स्मरण आ रही है। एक राजा था, उसकी 5 पत्नियां थीं। उसमें से एक पत्नी जो सबसे पहले जिससे उसने विवाह किया था वो उससे जरा भी प्रेम नहीं करता था, उसे जरा भी टाइम नहीं देता था और उसके पास उसके घर में भी कभी नहीं जाता था। अब दूसरी जो 4 पत्नियां थीं, 1, 2, 3, 4, जो 4 नंबर की पत्नी थी वो उसे बहुत अच्छी लगती थी, वो सदैव उसके साथ रहता था। और जो 1 नंबर की पत्नी थी वो बहुत छोटी थी, मतलब सबसे छोटी थी, तो उस ज्यादा समय उसको देता था। पहले 4 नंबर की वाली के साथ सदैव रहता था लेकिन ज्यादा समय उसको देता था, भले उसके पास भी होता था तो भी 4 नंबर वाली पत्नी सदैव उसके साथ रहती थी। तो फिर क्या, वो पहले नंबर वाली पत्नी को बहुत समय देता था और जो दूसरे नंबर वाली है उस बाकी जो समय होता था, जैसे रात हो जाती थी शाम तक, वो दूसरी पत्नी के पास जाता था, फिर तीसरी पत्नी के पास, ऐसे ऐसे मतलब 4 पत्नियों को समय देता था, मगर जो 5वीं पत्नी है ना उसको समय नहीं देता था। तो एक समय वो जंगल में शिकार खेलने जा रहा था तो एक साधु से उसकी भेंट हुई और उस साधु ने कहा कि 3 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब तुमने जिंदगी में जिस जिस को भी समय दिया है उसमें से एक को तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। तुम जाओ, जिस जिस के लिए तुम जीते हो, जिस जिस से प्रेम करते हो, उससे पूछो क्या तुम्हारे साथ चलेंगे। तब वो सबसे पहले अपनी जो छोटी वाली पत्नी थी ना उसके पास गया, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था और बहुत समय देता था उसको। तब पहली वाली पत्नी से, छोटी वाली पत्नी से उसने पूछा, 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तुम मेरे साथ चलोगी? तो बोला, पतिदेव 3 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, वेरी गुड, आपने मुझे आज ही बता दिया, आपने आज ही मुझे बता दिया, तो मुझे आज ही अपना कोई दूसरा इंतजाम कर लेना चाहिए, है ना। आज अभी 3 दिन के बाद तो घर में सब रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं करेगा, इसलिए आज ही मैं अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बता दिया ताकि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूं। उसे बहुत दुख हुआ, फिर वो दूसरी पत्नी के पास गया और कहा, 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी तो सही, मगर घर के दरवाजे तक, दरवाजे के बाहर मुझे तो जाने ही नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैं नहीं चल सकती, मैं दरवाजे तक आपका साथ दूंगी। उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो तीसरी पत्नी के पास गया, बोला, देखो 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है तो मेरे साथ चलोगी? तब उसने कहा, हाँ चलूंगी, मगर केवल शमशान तक, शमशान के बाद मैं आपके साथ किस चलूंगी, मैं शमशान तक आपके साथ चलूंगी। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ और अपनी चौथी पत्नी के पास गया, बोला, 3 दिन के बाद मैं मरने वाला हूँ, मेरी इच्छा है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि जिंदगी में कभी भी मैंने तुम्हारे बगैर एक कदम भी नहीं उठाया, जहां भी गया तुम मेरे साथ थे, मैंने तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं किया, तो मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, हाँ चलूंगी, लेकिन चिता तक, चिता के बाद तुम मुझसे अलग हो जाओगे और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, आगे हमारी राहें अलग होंगी, इसलिए उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। बहुत दुखी था और उसने सोचा कि अब मैं अपनी 5वीं पत्नी से भी पूछ लेता हूँ। फिर सोचा, उससे तो मैंने कभी टाइम दिया नहीं, उसके विषय में मैंने कभी सोचा ही नहीं, अब जब इतनी सारी पत्नियां जिनको मैं इतना प्रेम करता था, इतना समय देता था, वो भी मेरे साथ नहीं चल रही हैं, तो ये 5वीं पत्नी को तो वैसे ही मैंने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो तो मेरे साथ चलेगी नहीं, लेकिन फिर भी मन में कोई बात न रह जाए इसलिए गया अपनी 5वीं पत्नी के पास और बोला, 3 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, सब पत्नियों ने मुझे मना कर दिया, वो आगे तक नहीं चलेंगे मेरे साथ, तुम चलोगी?
उसने कहा, मैं तो तुम्हारी हूँ स्वामी, मैं तुमसे कभी अलग नहीं रह सकती। तुम चाहे कहीं भी चले जाओगे, मैं तुमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती हूँ। मैं तो तुम जहाँ भी जाओगे वहीं पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुमसे अलग नहीं होंगी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तो तुमसे कभी अलग होती नहीं, बस आप ही मुझसे दूर दूर भागते थे, मैं अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगी। महात्मा गण कहते हैं, हर एक व्यक्ति की ये 5 पत्नियां होती हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। हर एक व्यक्ति की ये 5 स्त्रियां होती हैं, और वो इन 5 पत्नियों में से 4 को ही समय देता है, और कलयुग में 5वीं पत्नी को समय नहीं देता। और पहली पत्नी कौन सी है, जिसको वो बहुत टाइम देता है, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो है धन, है ना। ज्यादातर जितने भी पुरुष इस भौतिक जगत में हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय सुबह से लेकर रात तक धन अर्जित करने में लगाते हैं। सुबह से लेकर रात तक बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना के रखा है। लेकिन वो पत्नी जो पहली थी, याद है उसने क्या कहा था? उसने कहा, आज बता दिया, बहुत अच्छा किया, अभी से मैं अपना दूसरा कहीं और इंतजाम करती हूँ। यानी मृत्यु से पहले ही जो हमारे बच्चे है ना, वो साइन करवा के देते हैं कि पिताजी, जिस जिस के लिए आपने अपने ये धन जितना इतना मेहनत से जो कमाया है, वो अभी से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, वरना कल हमारे में झगड़ा हो जाएगा। वैसे भी मरने वाले हो, तो जिस धन को कमाने के लिए हमने अपनी पूरी पूरा जीवन जो है वो वेस्ट कर दिया, वो धन तो हमारी मृत्यु से पहले ही दूसरे हमसे ले लेते हैं, वो हमारे साथ नहीं चलेगा। उसके उपरांत दूसरी पत्नी ने याद है क्या कहा था? बोला, मैं चलूंगी घर की चौखट तक। वो आपकी अपनी पत्नी होती है, जिसे आप इतना प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी वो केवल घर की चौखट तक ही आपका साथ देती है, आगे नहीं चलती। उसके उपरांत तीसरी पत्नी ने याद है क्या कहा था? वो कहा था, हाँ मैं चलूंगी मगर शमशान तक। और वो पत्नी जानते हैं कौन है? वो है आपके मित्र, आपके पुत्र, आपके रिलेटिव, जिनको बहुत समय देते हैं भाई। और क्या सोचते हैं कि मैं अगर भक्ति करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये बोलेंगे, देखो ये लग गई भगवान की भक्ति करने में, अब बस भक्ति करती रहेगी। मतलब ये सोचकर कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हम भक्ति भी नहीं करते। वो कहाँ तक आएंगे? शमशान तक आएंगे, 2 मिनट रोएंगे और उसके बाद अपने अपने घर चले जाके आराम से चाय पी के सो जाएंगे। और उसके बाद चौथी पत्नी ने क्या कहा था? मैं चलूंगी परंतु क्योंकि आप सदैव मेरे साथ रहे हो, इसलिए चिता तक तो मैं आपके साथ रहूंगी। और वो कौन है जानते हो? वो आपका शरीर है। ये शरीर जिसको सजाने के लिए, जिसको खिलाने के लिए, जिसको संभालने के लिए, जिसको पोसने के लिए मनुष्य हर अपराध करता है, वो शरीर चिता तक तो साथ देता है, लेकिन उसके बाद पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा अकेले सफर करती है। और जानते वो 5वीं पत्नी कौन है, जिसने कहा था, मैं पहले भी आपके साथ थी, अभी भी आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे आप किसी भी योनि में चले जाओ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वो है भगवान, जिसको हम अपने जीवन में बिल्कुल भी समय नहीं देते। आज अगर हम देखें तो अपने शरीर से रिलेटेड हर एक वस्तु के लिए एक टाइम फिक्स किया है। 3 दफा खाना खाना है, 1 दफा नहाना है, इतनी देर तक टीवी देखना है, इतनी देर तक आराम करना है, रात को इतनी देर सोना है, इतनी एजुकेशन प्राप्त करनी है, एक दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, एक दिन ये करना है, एक दिन वो करना है। लेकिन भक्ति का कोई समय भी नियत हमने नियोजित नहीं किया। भक्ति के लिए कोई नियम भी नहीं बनाया कि मुझे एक दिन में कम से कम इतनी भक्ति करनी है, भगवान को इतना समय देना, उसका कोई नियम नहीं है। आरती करते हैं वो भी ऐसा है, और अगर उस समय फ्री होंगे तो कर लेंगे, या तो जरूरी नहीं है लोग आगे, मेरे दोस्त आगे, मित्र आगे, तो फिर वो टाइम भी भगवान को नहीं देंगे। माला करनी है लेकिन कोई जरूरत नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि भाई मुझे एक दिन में कम से कम इतनी, इतना तो एक भगवान के लिए समय निकालना है। लेकिन हम भगवान को समय नहीं देते, परंतु भगवान चाहे हम किसी भी योनि में चले जाएं, चाहे हम कॉकरोच बन जाएं, चाहे हम मच्छर बन जाएं, या कुत्ता गधा कुछ भी बन जाएं, भगवान तो सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो भक्तों, हमें सोचना चाहिए कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस जन्म में तो हमें अपने इस जन्म को सफल करने के लिए भगवत भक्ति करनी है, भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को निर्माण करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो भगवान कहते हैं, यमयम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्ते सदा तद भाव भावित। पूरी जिंदगी जिसको याद करोगे अंत में भी वही याद आएगा, और जब वो याद आएगा तो उसी को प्राप्त करोगे। क्योंकि पूरे जीवन में तो कृष्ण को याद नहीं किया, फिर अंत समय में क्या याद आएगा, वो सवाल ही संभव नहीं है। इसलिए पूरा जीवन हमें भगवान की स्मृति बनाए रखनी है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम को याद करना है, स्मरण करना है, रटना है। जैसे एग्जामिनेशन में कैसे रटते हैं बच्चे, उसी तरह से एक इस 16 अक्षर वाले महामंत्र को रट लेना है कि जब कहीं चोट भी लगे, जब कहीं ठोकर भी लगे, तब मुंह से निकले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम। और यही काम आएगा, यही साथ चलेगा, इसके अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र इस महामंत्र के बल पर ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यत्। और इसी से हम अपने जन्म और मृत्यु को सक्सेस कर सकते हैं। और आगे भाया देखिए, जहां पर हमने प्रपट पढ़ना शुरू खत्म किया था वहीं से लास्ट शब्द है चार लाइनों के बाद भाया। भाया श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, गौर से सुनिए। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवतम में 11.2.37 में कहा गया है, भयम् द्वितीया भिनिवेशता स्यात्, अर्थात भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, वे आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अभी तो भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। उसके बाद है अभयम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अभय सभी तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर रीति से भय और अभय का यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है,
कि आगे क्या होगा। भय का मतलब यही है कि आगे क्या होगा। लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त होता है ना। जब मृत्यु आती है, जब अभक्त को लेकर जाती है, तो वो भयभीत होता है कि आगे क्या होगा। लेकिन एक भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मृत्यु के बाद मुझे कृष्ण प्राप्त होने वाले हैं, मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, तो उसे भय नहीं होता। वास्तव में कैसा है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया श्रीमद् भागवतम 11.2.37 का, जिसमें क्या जो महाराज निमि है वो उनको नौ योगेंद्र कौन है, जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, नौ योगेंद्र वो महाराज निमि को शिक्षा देते हुए भय के विषय में बता रहे हैं। वे क्या बताते हैं, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, कि भय का मतलब होता है कि दूसरे में, एषतः माने भगवान के अतिरिक्त किसी और के अंदर ऑब्जर्व होना, यानी किसी और के विषय में सोचना, वो है भय। और भगवान के अतिरिक्त और क्या है, दूसरा द्वितीय क्या है, वो है माया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता। इसको मैं आपको सिंपल करके बताऊं कि जैसे एक बहुत ज्यादा अंधेरे वाली जगह हो, जहां पर केवल अंधेरा ही अंधेरा हो, और आपको वहां से गुजरना है, तो आपको कितना भय लगेगा। रस्सी भी दिखेगी तो ऐसा लगेगा कि कहीं वहां पर सांप ना हो, और आप जा रहे होगे, भय हो रहा होगा और डर लग रहा होगा, ना जाने मैं गिर जाऊं, ना जाने मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, ना जाने कोई मुझे पकड़ लेगा, ना जाने क्या होगा, अंधेरे में डर लगता है ना। और वही रास्ता हो और एकदम रोशनी हो, सूर्य प्रकाश चल रहा हो और रोशनी होगी, तब आप उसी रास्ते पर बगैर भय के आप जा सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ से सीधा जाऊंगी, उसके बाद लेफ्ट साइड पे जाऊंगी तो रोड आ जाएगा और फिर मेरा घर आ जाएगा, है ना। तो उसी तरह से शास्त्र कहता है श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, या हर कृष्ण ताहार नहीं माया अधिकार। वास्तव में भक्तों, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल दी है ना, बहुत ज्यादा अच्छी है। उसमें क्या लिखा, भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न हुआ है। भय क्यों हो गया, अज्ञान के कारण। हम अज्ञान के कारण अपने आप को यह शरीर समझते हैं, और भय केवल इस शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों का होता है, आत्मा को किसी चीज का भय नहीं होता, है ना। आत्मा के लिए तो भगवान ने कह दिया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा को अस्त्र काट नहीं सकता, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, आत्मा को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता। और जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं, हमें भगवान के साथ अपने प्रेम को निर्माण करने के लिए अपने इस शरीर का कोई भी कष्ट स्वीकार है क्योंकि हम आत्मा हैं, तो फिर भय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे प्रहलाद महाराज को करोड़ों कष्ट दिए हिरण्यकश्यपु ने, एक बार भी वो भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था अगर हानि होगी तो मेरे शरीर की होगी, मेरी आत्मा को तो कुछ नहीं होगा। और उसके अतिरिक्त जो भगवान की शरण में होते हैं, उन्हें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि कृष्ण मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, कृष्ण इज माय प्रोटेक्टर, तो डर कैसा, है ना। भगवान मेरे संरक्षण करेंगे तो फिर भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर भक्त को पूरा विश्वास होता है कि भले सारा संसार मेरे खिलाफ हो जाए, परंतु यदि कृष्ण मेरे साथ है तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो फिर वो भयभीत कैसे हो सकता है।
जैसे बहुत ही सुंदर घटना याद आ रही है महाराज अम्बरीश की। जब महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने देखा कि उसने एकादशी उपवास पे मेरे आने से पहले ही पारायण कर लिया, तो फिर दुर्वासा मुनि को बहुत क्रोध आया और उसने झटका अपने एक बाल को निकाला और उसको जोर से जमीन पे पटका, तो उसमें से एक बहुत ही खौफनाक कृत्या निकली। हम बोलते हैं ना, इसने मेरे ऊपर जादू करवाया, उसने मेरे ऊपर जादू करवाया, ये करवाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया हूँ। उसी तरह का जादू करवाया नहीं, सामने एक बहुत बड़ी राक्षसी प्रकट कर दी और कहा मार डालो इसको। उस समय अम्बरीश महाराज को आप देखते ना एकदम शांत खड़े हैं, वो भागे तक नहीं क्योंकि डर ही नहीं था। उनके मन में यही विचार था कि कृष्ण यदि रक्षा करेंगे तो ये कृत्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है, और दूसरा अगर कृष्ण मुझे मारना चाहते हैं तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाऊंगा तो भी मैं बच नहीं सकूंगा, तो मैं पूरा का पूरा सरेंडर हूँ। भक्त क्यों भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसे दो बातें जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता भी रहे हैं तात्पर्य में, कि एक तो उसे ये यकीन होता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कुछ नहीं होता तो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, और दूसरा अगर मुझे मेरे शरीर को कोई हानि पहुंचाना चाहता है और कृष्ण मेरे साथ हैं तो वो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन यदि कृष्ण ही मुझे इस कष्ट में डालना चाहते हैं तो अवश्य यही मेरे लिए कल्याणकारी है, तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। मतलब राखे कृष्ण मारे खेर, मारे कृष्ण राखे खेर। भक्त तो सदैव यही सोचता है कि मैं तो क्योंकि कृष्ण का ही हूँ तो उसको जो करना है मेरे साथ वो कर ले, मुझे अपने कृष्ण पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा। इसे जब हम कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं तो हम अभय हो जाते हैं। इसीलिए गोविंददास बहुत सुंदर बात बताते हैं, बजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार विंद रे, भजहु रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, करहु हे भव सिंधु रे। यदि इस भव सिंधु को पार करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। यदि हम भगवान के चरणों का स्मरण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, तभी हम इस भवसागर को पार कर सकते। वास्तव में ये भवसागर को पार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये भवसागर जो है वो दुखों से भरा हुआ है, तो उसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन शास्त्र में बहुत ही सुंदर उपाय है। श्रीमद् भागवतम 10.14.58 में बहुत ही सुंदर उपाय बताया। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समाश्रिताये पद पल्लवाप्लवम् महत्पदम् पुण्ययशो मुरारे भवाम्भुज्य वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम् न देशम्। समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी, यानी
जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी नाव को ग्रहण कर लेता है, भगवान के चरण कमल को अप्लवम कहा गया है, नाव कहा गया है। वैसे तो भव सागर को पार करना कठिन है, लेकिन जब वो कृष्ण के चरणों रूपी नाव में बैठ जाता है, और वास्तव में वह भगवान मुकुंद के नाम से विख्यात है, और जब वो उस नाव के अंदर सवार हो जाता है, भवाम बुद्धिर वत्स पदम परम पदम, ये जो भौतिक जगत जो इतना कष्टदायक है वो कितना बन जाता है जानते हो? वत्स पदम। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को। जब गाय का बछड़ा समुद्र के किनारे पर चलता है ना, तो वो जब पांव को नीचे रखता है तो एक छोटा सा खड्डा बन जाता है और उसके अंदर पानी जमा हो जाता है लहरों से। लेकिन उस गाय की खुर के खड्डे को पार करना कितना सरल है, है ना? एक छोटा सा बच्चा भी उसे पार कर जाता है। तो जब हम कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, तो ये भव सागर हमारे लिए गाय के खुर में जमे हुए पानी के बराबर हो जाता है, और हम उसको सरलता से प्राप्त कर सकते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। परम पद कौन सा है? पदम पदम यद विपदाम नतेशा, जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें करना क्या है? केवल भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी है, और इसी से हमारे सारे भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त को कोई भय नहीं होता और वो सदैव अभय रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात जो आ रही है वो करके फिर खत्म करते हैं। भक्त सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करता है और भगवान को स्मरण करता है, इसलिए उसके जीवन में कोई दुख नहीं होता, कोई भय नहीं होता। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी से बहुत ही सुंदर बात है, जितनी बातें मैंने श्री प्रभुपाद जी के विषय में पढ़ी हैं, इसमें मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। श्री प्रभुपाद से एक जो रिपोर्टर्स होती है ना, उन्होंने कहा, स्वामी जी आप सबको यही कहते हो केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल इसी महामंत्र का जप करते रहो। श्री प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, तो बोला आप सबको यही कहते हो केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहो और भगवान के प्रसाद को खाते रहो। श्री प्रभुपाद जी ने हाँ, तो बोला क्या आप सबको केवल यही कहते हो कि आपको कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए और कृष्ण के ही श्रवण करना चाहिए, कृष्ण का ही जप करना चाहिए? तो श्री प्रभुपाद ने कहा हाँ। बोला स्वामी जी अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी और अगर ऐसा हो उस समय आपको पता चले कि कृष्ण लोक नहीं है, कृष्ण भी नहीं है और कृष्ण का नाम भी नहीं है, तो क्या करोगे? श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोला मैं अपने भक्तों को, जो भी हैं शिष्य, उनको भगवान की भक्ति करना सिखाता हूँ, ये बताता हूँ कि चार नियम का पालन करना है, कोई अपराध नहीं करना है, केवल भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाना है और भगवान का नाम लेना है। तो इस तरह से वो इस जीवन में भी आनंदित हैं, कोई अपराध नहीं करते और सुख से जीते हैं। जो भक्त है वो निर्भय होकर सुख से आनंद से जीता है। भले ही अभक्त सोचते रहे कि हम इतना बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं, बहुत ज्यादा अय्याशियां करते हैं, बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, बहुत ज्यादा ये करते हैं, लेकिन यदि दोनों को साथ में बिठा के पूछ लो कि सुखी कौन है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो महलों में रहने वाला सुखी हो, क्योंकि उसको करोड़ों चिंताएं होंगी। लेकिन भक्त जो है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भक्त सुखी रहता है इस भौतिक जगत में भी। अगर मरने के बाद कृष्ण नहीं है सपोज आपके कहने पर, तो भी उसने आनंद से जिया और सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो नरक में जाए, क्योंकि उसने कभी कोई अपराध नहीं किया। वो जो महलों में रहता था इस संसार में भी अपराध करते 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 चिंता से अपना जीवन बिताता था और मरने के बाद नरक में जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हम जो ये कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, हम जो भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, ये कोई मैंने अपना मेंटल स्पेकुलेशन से नहीं निकाला है,
ये शास्त्र का प्रमाण है, ये गीता कहती है, ये भागवत कहता है, वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर मेरा स्मरण करोगे तो मुझ तक पहुंचोगे। हम तो ऑथेंटिक बात पे फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आप कभी भगवान का नाम नहीं लेते, केवल इंद्र तृप्ति के लिए जीते हो, और मृत्यु के बाद आपको पता चलेगा कि यह मनुष्य जन्म कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए मिला था, और आपने यूं ही जानवरों की तरह जीते जीते उसको समाप्त कर दिया, तब आपका क्या होगा? हरे कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। जिसको मेरे शब्दों पर श्रद्धा नहीं है, जिसको मुझ पर श्रद्धा नहीं है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, और वो इस बारंबार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस कर बारम्बार जन्म लेते रहेंगे, और इसी दुखदायक भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसीलिए हमें भगवान के पवित्र नाम पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरे विश्वास के साथ। जो एक मंत्र हम जप करते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये महामंत्र मुझे बचाएगा, ये महामंत्र मुझे कृष्ण तक पहुंचाएगा। और इसी विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान का नाम जप करते रहेंगे, जन्म मृत्यु भय सबसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्ण।